हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये बात समझ में आते ही करण ने जतिन से कोई बहस नहीं की और ना ही उसे कोई सफाई दी। उसने सिर्फ इतना कहा, ओके सर, मैं बस अभी जाता हूँ। करण की बात सुनकर जतिन मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे गुड कहा, फिर वो अपने केबिन में चला गया। करण कैफे साइड गया, एक कप कॉफी बनवाई और उसे लेकर शिविका के केबिन में गया। इतनी देर बाद करण को आते देख शिविका के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आने लगी, लेकिन उसने अपनी खुशी को कंट्रोल किया और पोकर फेस बना लिया। वो नहीं चाहती थी कि करण को लगे कि वो उसके आने से खुश हुई है, लेकिन वो कनखियों से बार बार उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही करण ने उसकी तरफ देखा, उसने जल्दी से वापस लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ अपनी नज़रें गड़ा ली। करण भी एकदम प्रोफेशनल लुक के साथ वही चेहरा बनाकर उसकी टेबल के पास आया और कहा, ये रही मैम आपकी कॉफ़ी। वो कॉफ़ी लैपटॉप के पास टेबल पर रखी और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस मुड़कर जाने लगा। करण को जाते देख शिविका का चेहरा उतर गया, लेकिन वो उसे क्यों नहीं रोक पाई। करण पीछे मुड़कर अपनी हंसी रोकते हुए वापस वहाँ से बाहर निकल आया। उसे वहाँ सामने लगे कांच की खिड़की में शिविका का मायूस चेहरा नज़र आ रहा था और वो उसे परेशान कर रहा था। अगर शिविका उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकती तो शायद वो रुक भी जाता, लेकिन शिविका ने उसे नहीं रोका, इसलिए करण भी नहीं रोका। शिविका की ऐसी हालत देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए वो हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से बाहर निकल गया। उसके इस तरह से बाहर चले जाने पर शिविका ने अपने आप से बात करते हुए मुंह फुलाकर कहा, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब इसका ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, और अगर बोल दिया या कुछ ऐसा कहा भी तो क्या, मैं इसे सॉरी भी तो बोल देती हूँ, काम के फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है कभी कभी, बट ये लड़का, ठीक है जाओ करण, मुझे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी इतना काम है अभी तो। इतना बोलते हुए शिविका दोबारा काम में लग गई। समर का कोचिंग सेंटर। कल ऋषभ के घर पर जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचता हुआ समर आज काफ़ी खोया हुआ सा लग रहा था। अपनी सारी क्लासेस खत्म करके वो क्लासरूम से बाहर निकला और कोचिंग बिल्डिंग के गेट से भी बाहर निकल ही रहा था कि तभी अपने ख्यालों में गुम समर किसी स्टूडेंट से टकरा गया। आई एम सॉरी सर, स्टूडेंट ने जल्दी से टकराने के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा। समर का ध्यान उसकी तरफ हुआ और उसने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, समर ने बड़े आराम से कहा और फिर वहाँ से साइड से निकलते हुए बाहर की तरफ चला गया। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर वो स्टूडेंट जिससे समर टकराया था उसने आगे आते हुए पीछे मुड़कर अपने दोस्त से कहा, ये समर सर को क्या हुआ है, आज वो थोड़े से अरे लॉस्ट लग रहे हैं। इस पर उसके दोस्त ने भी उस तरफ देखते हुए अपने कंधे उचका दिए। उन्हें नहीं पता था कि आज समर को क्या हुआ है, जबकि समर रोज काफी एक्साइटेड होकर उन्हें पढ़ाता था, लेकिन आज काफी बेमन से उसने सारी क्लासेस ली क्योंकि उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। अपने मन में यही सब सोचता हुआ समर बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। ऋषभ के घर जाने का अभी समय नहीं हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वहीं आसपास कहीं जाकर कुछ खा पी लेता है। ज्यादातर उसे कॉफी पीना पसंद है, इसलिए वो अपने लिए कोई अच्छा सा कैफे देखता हुआ सड़क के किनारे पर चलने लगा। तभी सामने सड़क की दूसरी साइड से किसी ने उसके नाम की आवाज लगाई, समर, समर। अपने नाम की आवाज सुनकर समर का ध्यान उस तरफ हुआ और वो नजर उठाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे सड़क के उस पार खड़ी हुई मियां नजर आई, जो उसे देखकर उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी और अपना हाथ भी हिला रही थी। समर को पहले तो मीरा के वहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर उसने देखा कि वहाँ वो मोबाइल शोरूम भी है जहाँ मीरा काम करती है। वो समझ गया कि ज़रूर उसकी अभी अपने काम से छुट्टी हुई होगी या फिर ब्रेक के लिए वो बाहर निकली होगी, क्योंकि वो उस मोबाइल शोरूम की ड्रेस पहने हुई थी। लेकिन समर को समझ नहीं आया कि उसे देखकर मीरा आज इतना एक्साइटेड क्यों हो गई। समर मीरा को थोड़ा बहुत पसंद करता था, एक तरह से वो उसकी पहली क्रश थी, इसीलिए भले ही वो उससे उम्र में बड़ी है फिर भी वो उसे कभी दी कहकर नहीं बुलाता था, लेकिन मीरा ने कभी उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। आज समर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन साथ ही मन ही मन खुशी भी हुई। उसने मीरा को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद रोड क्रॉस करके उसके पास पहुंच गया। मीरा ने समर को देखकर कहा, अच्छा तो यहाँ पर कोचिंग देते हो तुम बच्चों को, बट कभी बताया नहीं तुमने मुझे इस बारे में। मीरा ने जैसे थोड़ी शिकायत करते हुए कहा। समर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं हमारी कभी बात नहीं हुई ना इस बारे में, और वैसे भी आजकल आप घर भी नहीं आते हो इतना। समर की बात सुनकर मीरा बोली, हाँ वो करण इतना बिजी रहता है, वो घर पर नहीं होता, और तुम भी नहीं रहते तो फिर क्या करने आऊँ मैं दीवारें देखने, और वैसे भी मैं भी तो काम पर ही होती हूँ ना, इसलिए मुझे भी टाइम नहीं मिलता। समर ने तो बस ऐसे ही नॉर्मल वे में पूछ लिया था, लेकिन मीरा ने उसकी बात का जवाब में अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया। समर खुद ही थोड़ा सा चुप हो गया और फिर कुछ नहीं बोला। मीरा ने फिर से बात शुरू करते हुए उससे पूछा, अच्छा वैसे कहाँ जा रहे थे, तुम्हारी सारी क्लासेस खत्म हो गई क्या। मीरा के इस सवाल पर समर ने धीरे से अपना सिर ऊपर नीचे करते हुए कहा, हाँ बस अभी सारी क्लासेस खत्म हुई, लेकिन अभी मुझे एक जगह और जाना है, एक प्राइवेट कोचिंग के लिए। समर ने ऐसे ही फ्लो में उसे बता दिया और इस बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मीरा ने यह बात सुनकर उससे पूछा, अच्छा तो प्राइवेट कोचिंग भी देना स्टार्ट कर दिया है, सही है, वैसे अच्छे पैसे मिलते हैं ना उसमें। मीरा की इस बात पर समर ने फिर से हाँ में अपना सिर हिलाया तो मीरा ने कहा, अच्छा तो अभी तुम्हें जाना होगा ना, और मैं शायद तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मीरा ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहा, तो समर उसकी बात काटते हुए बोला, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है उसमें, मैं तो बस कॉफ़ी पीने जा रहा था। वैसे तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, तुम्हारी जॉब का टाइम ओवर हो गया क्या? समर की बात का जवाब देते हुए मीरा ने कहा, नहीं ओवर तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए अभी थोड़ा ब्रेक टाइम है, मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मैं भी बस कुछ खाने के लिए ही बाहर निकली थी, लेकिन तभी तुम दिख गए। पहले मुझे लगा कि कोई तो है जाना पहचाना सा, लेकिन फिर मैं इतनी दूर से भी तुम्हें पहचान गई तो मैंने सोचा बुला लेती हूँ, थोड़ी बहुत बातें ही हो जाएंगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए ये सब कहा। वो काफ़ी फ्रेंडली है और हमेशा करण के साथ समर उसे घर पर मिलता था, तो समर से भी उसका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, लेकिन वो ऐसे एक्साइटेड तो बात करने के लिए पहली बार ही है। वहीं दूसरी तरफ समर को भी उसका साथ अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने भी मना नहीं किया और बोला, हाँ ठीक है हम साथ में कुछ खाने चल सकते हैं, मैं भी कॉफ़ी पीने ही जा रहा था, वो सिर में थोड़ा दर्द, मतलब बस ऐसे ही। आखिरी बात समर ने धीमी आवाज में कही, जो मीरा सुन नहीं पाई क्योंकि उसने इतना ध्यान नहीं दिया। मीरा ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहा, हाँ चलो फिर साथ में ही चलते हैं। मीरा की बात सुनकर समर ने थोड़ा आगे आते हुए इधर उधर देखा और फिर वे दोनों वहां के पास वाले ही कैफे में चले गए, वृंदा मैनसन। समर की ही तरह ऋषभ भी इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि समर आज उसे पढ़ाने के लिए आएगा या नहीं। ये सब सोचकर वो बार बार घड़ी की तरफ देखता हुआ अपने घर के हॉल में टहल रहा था।
इस तरह से टहलते हुए कुछ ही देर बाद ऋषभ ने सोचा कि वो आज थोड़ा पहले ही ड्राइवर को बोल दे वहां समर की कोचिंग सेंटर जाकर खड़े होने के लिए। ये सोचते हुए वो बाहर दरवाजे की तरफ आ ही रहा था कि तभी पीछे से उसके पापा की आवाज़ आई, ऋषभ तुम ये सब जो कुछ भी कर रहे हो वो मत करो, क्यों अपने साथ साथ उस लड़के का भी समय बर्बाद कर रहे हो, उसे सब कुछ तुम्हारी तरह आराम से बैठे बैठे नहीं मिलता है, उसके अपने स्ट्रगल हैं लाइफ में। अपने पापा की आवाज़ सुनकर ऋषभ का मूड खराब हो गया। वो उन्हें फिलहाल कोई जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि जब भी वो अपने पापा से बात करना शुरू करता है उनकी बात बहस पर ही जाकर खत्म होती है, वो भी ऐसी बहस जिसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता और उन दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है। ऋषभ ने दरवाजे के पास ही रुककर अपने पापा की ये सारी बातें सुनी, लेकिन उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे की तरफ ही बढ़ने लगा। लेकिन तभी पीछे से उसके पापा थोड़े गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, ऋषभ मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो रहे हो, मैं शिविका से बात करके तुम्हारे सारे पैसे सारे खर्च बंद करवा दूंगा। अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके बोलते हुए ऋषभ अपनी जगह पर रुक गया और फिर पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है डैड? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा भी क्या बिगाड़ा है आपका, और आपको खुश करने के लिए ही मैंने समर से ये हेल्प ली है जिससे कि मैं पास हो जाऊं, लेकिन आप हैं कि पता नहीं उसे मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अब पता नहीं वो आएगा भी या नहीं, और कैसे नाराज़ होकर गया था वो कल। ऋषभ ने सारा इल्ज़ाम अपने पापा पर ही लगाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अपने ऑटोमेटिक व्हीलचेयर चलाते हुए उसके पापा उसकी तरफ आए और बोले, नाराज़ नहीं निराश होकर गया था वो ऋषभ, और मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तुम खुद ही अपने दुश्मन ज़रूर हो, जैसा कि समर ने भी कहा था। साथ ही अगर तुम्हें पढ़ाई की या किसी की भी इतनी फ़िक्र होती तो तुम ऐसे शराब खरीदने के लिए उसी वक्त बाहर नहीं गए होते, इसलिए हम सबसे और उससे पहले अपने आप से तो झूठ बोलना बंद करो। क्रमशः